लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन माला में जकयुस से यीशु के मिलन पर चिंतन प्रस्तुत किया। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला के शुरू में सबों का अभिवादन करते हुए कहा, सुसमाचार में यीशु का कुछ लोगों से मिलन पर हम अपना चिंतन जारी रखते हैं। इस बार हम जकयुस के व्यक्तित्व पर चिंतन करेंगे, जिसे मैं विशेष रूप से अपने हृदय के करीब पाता हूं, क्योंकि वे मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा में एक विशेष स्थान रखते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में जकयुस को हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत पाते हैं जो अपने में एक तरह से खोया हुआ प्रतीत होता है। शायद कभी कभी हम भी अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव करते हैं, आशाहीन। हमें कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती है। जकयुस को इस बात का पता चलता है कि यीशु उसे खोज रहे होते हैं। संत पापा ने कहा, यीशु वास्तव में जेरिखो के लिए निकल पड़ते हैं, उस शहर की ओर जो समुद्र तल से नीचे था, जिसे नरक स्वरूप देखा जाता था। वे वहां जाने की चाह रखते हैं, जिससे वे उन्हें खोज सकें जो अपने में खोए हुए होने का अनुभव करते हैं। और वास्तव में पुनर्जीवित यीशु आज की विकट परिस्थिति में, युद्धों के स्थानों में, निर्दोषों के दुखों, माताओं के दिलों में जो अपने संतानों को मरता हुआ देखते हैं, गरीबों की भूख में भी निरंतर उनके पास नीचे उतरते हैं। जकयुस एक निश्चित अर्थ में खोया हुआ था। शायद उसने कुछ गलत चुनाव किया था, या शायद जीवन ने उसे उन परिस्थितियों में ला छोड़ा था जहां से वह निकलने को संघर्ष करता है। संत लूकस इस व्यक्ति की विशेषताओं पर जोर देते हैं। वह केवल नाकेदार नहीं था, अर्थात एक व्यक्ति जो अपने ही लोगों से रोमन आक्रमणकारियों के लिए कर उगाही करता हो, बल्कि वह उन कर वसूलने वालों का प्रधान भी था, मानो यह उसके पापों को दुगुना कर देता हो। इसके उपरांत संत लूकस हमारे लिए इस बात का जिक्र करते हैं कि वह अपने में एक धनी व्यक्ति था। इसका तात्पर्य यह था कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसा किया था। इन सारी चीजों का परिणाम यह था कि वह सबों से अलग कर दिए जाने का अनुभव करता, हर कोई उससे घृणा करता था। संत पापा ने कहा कि जब उसे यह पता चलता है कि यीशु उसके शहर में आ रहे हैं, उसे यीशु को देखने की इच्छा होती है। उसे यीशु से मिलने की कोई हिम्मत नहीं थी, वह तो उन्हें केवल दूर से देखने की चाह रखता था। हमारी इच्छाओं को बाधाओं का सामना करना होता है और वे स्वतः ही पूरी नहीं होती हैं। जकयुस अपने में नाटा था। यह हमारे जीवन की सच्चाई है कि हम अपनी कमजोरियों में होते हैं, जिनका हमें स्वयं सामना करने की जरूरत है। इसके साथ ही दूसरे हैं जो कभी कभी हमारी सहायता नहीं करते हैं। भीड़ जकयुस को देखने में बाधा बनती है। शायद हम उनमें एक तरह से प्रतिकार की भावना को पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि लेकिन जब हमारी एक तीव्र इच्छा होती है तो हम निराश नहीं होते हैं। हम अपने लिए एक विकल्प को पाते हैं। यद्यपि यह हमसे शर्म के बदले एक साहस की मांग करती है, इसके लिए हमें बच्चों सा एक सरलता की आवश्यकता होती है जिसके संबंध में कोई अधिक सोच विचार नहीं करते हैं। जकेयुस एक बच्चे की भांति एक पेड़ पर चढ़ जाता है। यह यीशु को देखने की एक अच्छी जगह रही होगी, विशेषकर पेड़ की डालियों के पीछे छिपकर बिना किसी के द्वारा देखे जाने के। लेकिन यीशु के साथ सदैव अनिश्चित घटना होती है। यीशु जब वहां पहुंचते हैं, वे ऊपर की ओर देखते हैं। जकेयुस को ऐसा लगता है मानो वह पकड़ा गया और उसे खुले आम गालियां मिलेंगी। जनता को इसकी चाह थी, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। यीशु जकेयुस को पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित होती और उसे शीघ्र नीचे आने को कहते हैं। आज मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। संत पापा ने कहा कि यीशु खोए हुओं को खोजे बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। संत लूकस जकेयुस के हृदय में व्याप्त खुशी के बारे में जिक्र करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी ओर देखे जाने से खुशी का अनुभव करता है, जहां हम उसे पहचान देते और उससे भी बढ़कर उसके पापों को क्षमा करते हैं। यीशु की निगाहें गाली की नहीं अपितु करुणा की हैं। यह वह करुणा है जिसे हम कभी कभी स्वीकारने में असहज महसूस करते हैं, विशेषकर जब ईश्वर उन्हें क्षमा करते हैं जिन्हें हम क्षमा के योग्य नहीं समझते हैं। हम अपने में भुनभुनाने लगते हैं क्योंकि हम ईश्वर की प्रेममयी निगाहों को सीमित करने की चाह रखते हैं। अपने घर के दृश्य में जकेयुस यीशु के क्षमाशील बातों को सुनने के बाद खड़ा होता है, मानो वह मृत्यु से पुनर्जीवित हो रहा हो। वह खड़ा होकर अपने में प्रतिज्ञा करता है कि जिस किसी के साथ उसने धोखाधड़ी की है उसे वह चार गुना लौटा देगा। यह ईश्वरीय क्षमा का दे नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय क्षमा हमें मुफ्त में मिलती है, बल्कि यह उस प्रेम का अनुसरण करना है जिसने उसे प्रेम किया है। जकेयुस वह प्रतिज्ञा करता है जिसके लिए वह बाध्य नहीं था, लेकिन वह ऐसा करता है क्योंकि वह समझता है कि यह प्रेम करने का एक तरीका है। ऐसा करने के द्वारा वह चोरी के संबंध में रोमी और मूसा की संहिता के बीच पश्चाताप की कड़ी स्थापित करता है। जकेयुस केवल चाह रखने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह यह जानता है कि अपने निर्णयों को पूरा करने हेतु ठोस कार्य कैसे करने की जरूरत है। उसका उद्देश्य साधारण या अमूर्त नहीं है, बल्कि यह स्वयं के इतिहास से शुरू होती है। वह अपने जीवन पर चिंतन करता और उन चीजों को पहचानता है कि कहां से उसे अपने में परिवर्तन लाने की जरूरत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि हम जकेयुस से सीखें कि हमें निराश नहीं होना चाहिए अपने जीवन की उन परिस्थितियों में भी जब हम छोड़ दिए जाने या बदलने की अयोग्यता का अनुभव करते हैं। आइए हम अपने में यीशु को देखने की चाह उत्पन्न करें और उससे भी बढ़कर अपने को ईश्वरीय करुणा में पाने दें जो सदैव हमें देखने आते हैं, चाहे हम अपने जीवन की किसी भी खोई हुई परिस्थिति में क्यों ना हों।
रचना का स्वामी मेरे तुम प्रियतम प्रभु, क्षमा करो मुझे शरणागत। करो मुझे शरणागत को, खड़ी हो तेरे द्वार। प्रभु तुम ही हो करुणा
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अप्रैल महीने की अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई में नई तकनीकों और इस आशा को समर्पित किया कि उनका उपयोग मानवीय संबंधों की जगह नहीं लेगा, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करेगा और हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद करेगा। सोशल मीडिया के रुझानों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लगातार बढ़ते क्षेत्र से भरी दुनिया में संत पापा फ्रांसिस इस बात पर जोर देते हैं कि प्रौद्योगिकी ईश्वर द्वारा हमें दी गई बुद्धिमत्ता का फल है। हालांकि वे इसका उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। संत पापा अलगाव की समस्याओं और सच्चे रिश्तों की अनुपस्थिति का संकेत देते हुए कहते हैं, अगर हम लोगों के साथ रहने की तुलना में अपने सेल फोन पर अधिक समय बिताते हैं तो कुछ गड़बड़ है। संत पापा फ्रांसिस चेतावनी देते हैं कि किसी भी रूप से स्क्रीन का बढ़ता उपयोग हमें यह भुला देता है कि इसके पीछे असली लोग हैं जो सांस लेते हैं, हंसते हैं और रोते हैं। परिणाम स्वरूप सोशल मीडिया नेटवर्क पर साइबर बुलिंग और घृणा बढ़ने लगती है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी एक ऐसी वस्तु है जिसका लाभ केवल कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक, सामाजिक, श्रम, शैक्षिक और अन्य असमानताएं पैदा होती हैं। इन खतरों से बचने के लिए संत पापा सभी को मानव व्यक्ति की सेवा में प्रौद्योगिकी को लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोगों को एकजुट करने, जरूरतमंदों की मदद करने, बीमारों के जीवन को बेहतर बनाने, मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रह की रक्षा करने के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी का उद्देश्य मनुष्य को वास्तविकता और रिश्तों से अलग करना नहीं है। इसलिए संत पापा फ्रांसिस सभी को स्क्रीन पर कम देखने और एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। रिश्तों के साथ प्रौद्योगिकी को संतुलित करने से हम में से हर एक को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि वास्तव में हम भाई बहन एक ही पिता की संतान हैं। उधर वाटिकन न्यूज ने 2 अप्रैल संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपना अजरबैजानी संस्करण लॉन्च किया है, जो संचार विभाग की बहुभाषी सेवा को 56 भाषाओं तक विस्तारित करता है, ताकि संचार को बढ़ाया जा सके, विश्वास को मजबूत किया जा सके और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। अजरबैजान के प्रेरितिक प्रीफेक्ट धर्माध्यक्ष व्लादिमीर फेकेटे SDB ने 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की अजरबैजान की यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा, 23 मई 2002 को बाकू में अपने प्रवचन में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस बात पर जोर दिया था कि देश में छोटे कैथोलिक समुदाय को समाज में एक खमीर की तरह होना चाहिए। आज दुनिया में मीडिया सच्चाई फैलाने, आशा को बढ़ावा देने और विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसलिए हमने ज्ञान को बढ़ावा देने और विश्वास को मजबूत करने के लिए वाटिकन रेडियो वाटिकन न्यूज के साथ इस परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया। वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रुफिनी ने इस बात पर जोर दिया कि हर ताना बाना अनगिनत धागों से बना होता है और हमारा संचार नेटवर्क भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि हर भाषा कलीसिया की जीवंत संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाटिकन न्यूज की कई भाषाओं में अजरबैजानी को शामिल करना यह प्रदर्शित करना है कि कलीसिया में कोई भी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। संचार विभाग के संपादकीय निदेशक अंद्रेया तोर्नेल्ली ने समझाया कि अजरबैजानी में वाटिकन समाचार न केवल संत पापा के संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है, बल्कि धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वाटिकन रेडियो वाटिकन न्यूज के प्रमुख और उप संपादकीय निदेशक मासिमिलियानो मानिकेती ने इस नए जोड़ के महत्व को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उजागर किया, क्योंकि यह लाखों लोगों को संत पापा, विश्वव्यापी कलीसिया और परम धर्म पीठ के समाचार द्वारा सीधी पहुंच प्रदान करता है। उधर हथियारबंद गिरोहों ने सोमवार को मध्य हैती के मिरेबलैस शहर पर हमला किया और जेल से लगभग 500 कैदियों को छुड़ा लिया। हैती की राष्ट्रीय पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि देश की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित शहर में अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने शहर को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों ने चेतावनी दी है कि भागे हुए कई कैदी अभी भी सड़क पर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद को बताया कि विभिन्न गैंग गठबंधनों ने स्कूलों, अनाथालयों और अस्पतालों पर पुलिस बल से अधिक संख्या में समन्वित हमले किए हैं। उन्होंने हैती की स्थिति को एक और संकट बिंदु बताया। उधर मॉस्को ने यूक्रेन में शांति वार्ता पर बाधा डाली। फरवरी 2022 में शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए वार्ता ठप हो गई है। मॉस्को ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावों को अस्वीकार्य कहा है, जबकि कीव के राष्ट्रपति जेलेंस्की दुर्लभ मृदा के लिए समझौते पर गति धीमी से काम कर रहे हैं। रूस, जिसने कथित तौर पर एक बार फिर जेलेंस्की को हटाने की मांग करके ट्रंप की नाराजगी को भड़का दिया है, को धमकी दी गई है कि यदि संघर्ष समाप्त करने का समझौता विफल हो जाता है तो उसे तेल पर द्वितीयक शुल्क लगाना पड़ेगा। हालांकि इस खबर से एक उम्मीद की किरण मिलती है कि इस सप्ताह रूसी वार्ताकार दिमित्रीव दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में यूक्रेन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत विटकॉप से मिलने के लिए वाशिंगटन में होंगे। फरवरी 2022 में संघर्ष की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया और खार्किव क्षेत्रों में रात में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत और 10 घायल होने की खबर है, जहां भीषण आग लग गई। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।